ओम शांति। ज्ञान सरोवर में बहुत अच्छे ज्ञान की डुबकी सभी लगा रहे हैं। इतना सुंदर वातावरण, एकांत, शीतल, सूक्ष्म वतन का अनुभव कराता है। बादलों के बीच तपस्या करने का अपना ही आनंद है। तो सभी चारों ओर से आप सभी बाबा के बच्चे अपने बेहद घर में आए हैं और बाबा ने आज विशेष सबका बहुत सुंदर श्रृंगार किया। प्योरिटी की पर्सनैलिटी क्या है, बाबा की मुरली से सबको स्पष्ट हुआ है। संगम युग पर हम सबको बाबा ने रूहानियत से संपन्न किया है और जितनी रूहानियत आती है उतनी प्योरिटी की पर्सनैलिटी बढ़ जाती है। रूहानियत का भाव तो समझते ही हैं। जितना हम सभी अपनी आत्मिक स्थिति में रहते हैं, दीयमान से न्यारे होकर के रहते हैं, उतना विचारों में स्वच्छता आती जाती है, अलौकिकता आती जाती है। आज बाबा ने प्योरिटी की पर्सनैलिटी का वर्णन करते दो विशेषताएं सुनाई, एक स्वच्छता और दूसरी सत्यता। और स्वच्छता में भी संकल्पों की स्वच्छता, क्योंकि कई बातें हम देखते हैं, नजर जाती है, जैसा देख लेते हैं सुन लेते हैं वैसे ही चिंतन चल जाते हैं, विचार अशुद्ध हो जाते हैं। इसलिए बाबा ने कहा कि व्यर्थ संकल्प भी अस्वच्छता है, अपवित्रता है। केवल ब्रह्मचर्य व्रत की पालना नहीं, लेकिन आत्मा गुणवान बनती जाए, दिव्य गुणों से उसका श्रृंगार होता रहे, ऐसी दिव्य गुणधारी आत्मा जो सत्यता की अथॉरिटी है। सत्यता की बहुत गहरी परिभाषा बाबा ने सुनाई है, इस मुरली में तो नहीं इतना स्पष्ट किया, लेकिन कई मुरलियां सत्यता पर विशेष चली हैं। और वो सत्यता के दो अर्थ बाबा सुनाते हैं, एक सत्य माना अविनाशी, आत्मा परमात्मा प्रकृति जैसे सत्य है, अविनाशी चीज है, और दूसरी सत्य माना सच्चाई। और जहां सच्चाई है माना हम अपने आत्मिक स्वरूप में जहां स्थित हैं, सच वही है। अगर देहमान में कोई है और कहे मैं सच कहता हूं तो उसका ये कहना ही गलत है, क्योंकि वो बॉडी कॉन्शियस है, देहमानी है। हम सब बाबा के बच्चों को सत्य स्वरूप की पहचान मिली है और जितना हम अपने सत्य स्वरूप में स्थित होते हैं और स्थित होकर के फिर कोई बात कहते हैं तो सच्ची है। और जहां सत्यता है वहां निर्भयता होती है। और वो सत्यता जो आजकल लोग कह देते हैं मैं सच्चा हूं इसलिए मैं ये बात सहन नहीं कर पाता हूं, मेरे से झूठ सुना नहीं जाता है, तो बाबा कहते हैं वो सच्चाई सच्चाई नहीं है, क्योंकि सत्यता के साथ साथ सभ्यता जीवन में जरूर होनी चाहिए। जो सच्चा है वो बहुत रायल होता है, उसको बोलने की और सिद्ध करने की आवश्यकता ही नहीं रहती। मैं राइट हूं, मैं सच बोल रहा हूं, ये कहने में भी कुछ मिक्स लगता है, इसलिए बाबा हम बच्चों को कहते हैं अगर तुम सच्चे हो तो सच्चे को कभी भी कोई बादल ढक नहीं सकते। सत्यता एक सूर्य है जिसकी चमक को कोई छिपा नहीं सकता, कब तक छिपाएगा। इसलिए हम सभी अपने सत्य स्वरूप में, आत्मिक स्वरूप में स्थित रहने का जितना अभ्यास करते हैं उतना हमारी कर्म इंद्रियां शीतल होती जाती हैं। जितने भी विकारों की प्रवेशता हुई, उत्पत्ति हुई, उसका मूल कारण देहमान है। कहते हैं सब पापों का बाप जो है वो बॉडी कॉन्शियस है। सतयुग और त्रेता के अंदर कोई भी विकर्म नहीं थे, पाप कर्म नहीं थे, उसका मूल कारण था वहां पर नेचुरल आत्मभिमानी स्थिति थी। और जब द्वापर युग शुरू हुआ, भले आज बाबा ने हमें प्योरिटी की पर्सनालिटी में द्वापर की पूज्य स्थिति का वर्णन किया कि आप बच्चों के मंदिर कितने आलिशान बनते हैं, कितनी श्रेष्ठ भावना से आपकी पूजा होती है, ऐसे पूज्य संगम युग पर पवित्रता के आधार से आप बनते हो जो द्वापर और कलयुग में आपके दर्शन करने से लोग प्रसन्न हो जाते हैं। लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाता है तो जितनी पूज्य देवी देवताओं की आत्माएं सतयुग त्रेता में जो सर्व गुणों से संपन्न रही, सर्व कलाओं से संपन्न रही, वो द्वापर आते आते द्वापर हो जाता, हाफ हो जाता है, दो पुर हो जाते हैं। 16 कला से आत्मा एकदम 8 कला पर आ जाती है। माना प्योरिटी की परसेंटेज में गिरावट आती है। कई बार कोई कोई सोचते हैं सतयुग में जब देवता 16 कला संपूर्ण थे तो त्रेता में 14 कलाएं कैसे रही, कौन सी दो कलाएं कम हो गई। वास्तव में कोई गिनती वाली कलाएं नहीं है, ये संपूर्णता की निशानी है। और ये चांद जैसे संपूर्ण इस रूप में जब होता है तो 16 कलाएं मानी जाती, लेकिन जब उसकी परसेंटेज में गिरावट आती है तो धीरे धीरे कलाएं गिरती हैं। ऐसे ही आत्मा अपनी जो फुल स्टेज है, सर्व कलाएं जिसमें हैं, उसको कहते हैं 16 कला संपूर्ण है। और जितनी उसकी पवित्रता के अंदर गिरावट आती जाती है परसेंटेज में, उतनी उसकी कलाएं कम होती जाती है। अब गिरावट आती क्यों है? कोई संग नहीं है, कोई देहमान नहीं है, कोई नेगेटिविटी नहीं है, फिर भी गिरते कला होती है। सृष्टि चक्र के अंदर नियम ऐसा ही है कि जब आत्मा इस शरीर के साथ पार्ट बजाना शुरू करती है, एक शरीर लिया, पार्ट बजाया, छोड़ा, फिर दूसरा लिया, तीसरा लिया, तो शरीर के संग का धीरे धीरे आत्मा को रंग लगता है। और शरीर के साथ होने के कारण देह मान का अंश बढ़ता जाता है और वो प्योरिटी की जो परसेंटेज है उसमें धीरे धीरे गिरावट आती जाती है। इसलिए सतयुग में 2 बच्चे हैं, त्रेता तक 3 हो जाते हैं, फिर वृद्धि और विस्तार हो जाता है और द्वापर आते आते आत्मा योग बल से जो जन्म लेने वाली है वो योग बल ही समाप्त हो जाता है, सृष्टि ही भोग बल की पैदा होती है। इसलिए परमात्मा इस संगम युग पर हम बच्चों को बार बार एक ही अभ्यास, एक ही मेहनत सिखाते हैं, बच्चे जितना हो सके देही अभिमानी बनने का पुरुषार्थ करो। आज भी बाबा ने कहा क्या एक सेकेंड में अशरीरी बन सकते हो, प्रैक्टिस किया है, ऐसे बात कर रहे हैं और एक सेकंड शरीर से अलग हो जाए। शरीर का आधार लें और शरीर से न्यारे हो जाए। इस अभ्यास से क्या फायदा होगा? ये जो कर्म इंद्रियों की खिंचावट है, आकर्षण है, उससे आत्मा न्यारी हो जाएगी। देह अभिमान से न्यारे होते ही ये सब कर्मेंद्रियों की अपनी पकड़ होगी और हमारे कंट्रोल में आ जाएंगे। इसका अभ्यास बीच बीच में कर्म के अंदर भी, भले अभी योग भट्टी में हो, लेकिन जब अपने कर्म क्षेत्र पर जाएंगे तो एक सेकंड में अपने स्वरूप में स्थित हो जाओ। आत्मा का स्वरूप जो लाइट है, ज्योति बिंदु है, उस स्वरूप में स्थित होकर के अपने संकल्पों को, विस्तार को सार में लेकर के अपने स्वरूप की स्मृति आई और शरीर से न्यारे हो गए। यह शरीरी स्थिति का अभ्यास, आत्मा की प्योरिटी की जो परसेंटेज है वो बढ़ा देगा। जो देह मान से इम्प्योरिटी आई है, दैहिक दृष्टि, वृत्ति, स्मृति, कृति, बोल, सब में देह मान दिखाई देता है, झलकता है। हम अभ्यास करते करते पहला अभ्यास जो हमारी मूल शक्ति है, संकल्प शक्ति, उस संकल्प शक्ति पर कंप्लीट कंट्रोल चाहिए। आर्डर प्रमाण हमारे संकल्प चले, जो हम सोचे उसी स्वरूप में स्थित हो जाएं। ऐसे नहीं संकल्प बह रहे हैं, इधर जा रहे हैं, उधर जा रहे हैं, संकल्पों की गति पर नियंत्रण ही नहीं रहा है। अभी वास्तव में अपने संकल्पों की दिशा और गति, इन दोनों बातों पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि संकल्प एक ऐसी शक्ति है जिसको मारना नहीं है, जिसको दबाना नहीं है, उसको सही रूप से यूज करना है। आत्मा की शक्ति, सबसे बड़ी शक्ति संकल्प शक्ति है, और संकल्प शक्ति को हम अगर यथार्थ रीति से समझ नहीं रहे हैं, यूज नहीं कर रहे हैं, तो संकल्प व्यक्ति को बहुत परेशान करते हैं, हैरान करते हैं। इसलिए सभी बाबा के बच्चों को रोज बाबा हमें कहता है, मुरली सुनो, अच्छा चिंतन करो, एक दिन भी अब्सेंट नहीं बनना। कितनी मुरलियां इस पर चलती हैं? क्यों चलती हैं? हमारे चिंतन धारा को परिवर्तन करने के लिए केवल एक ही आधार बाबा का मुरली है। अगर मुरली का अच्छा चिंतन कोई व्यक्ति करे और उस चिंतन के आधार से जो कार्य कर रहा है, संकल्प बीज है, जैसा बीज है वैसा ही उसका वृक्ष है, वैसा ही उससे फल निकलता है। इसलिए सभी बाबा के बच्चों को संगम युग पर अपने संकल्प की क्वालिटी को बढ़ाने की आवश्यकता है। नहीं जो आया सोच रहे हैं, जो आया कह रहे हैं, जो आया चिंतन चल रहा है, कभी उसकी स्पीड पर, उसकी दिशा पर कंट्रोल ही नहीं है। इसलिए जब बैठते हैं, कई बार आपने अनुभव किया होगा, एक घंटा हम योग में बैठे, कितनी देर वो एक रस स्थिति रहती है। कहाँ कहाँ ये संकल्प घूमते हैं, किस किस ओर जा रहे हैं। कभी अपने रूप को साक्षी होकर के देखो। सुना होगा मैंने कई क्लासेज में दादी जी का एक अनुभव सुनाया है। दादी जी लास्ट दिनों में 2005-06 बहुत अभ्यास करती थी, सब आंख बंद करके एकदम एकांत में चली जाती थी। तो एक दिन मैं दादी प्रकाश मणि की बात सुना रहा हूं, शायद बहुत कम लोगों ने देखा भी है दादी को, 16 साल हो गए दादी को अव्यक्त हुए। जिन्होंने दादी प्रकाश मणि को देखा है वहां तो उठाओ, 50-50 है। टीचर्स तो देखते ही, देखा ही है। 2005-06 में एक दिन दादी को माउंट आबू आने की मना कर दिया था डॉक्टर्स ने, क्योंकि यहाँ का थोड़ा वायुमंडल और यहाँ की ऑक्सीजन कम है लेवल उसका। तो आते ही दादी के सांस फूलने लगते थे। तो डॉक्टर्स कहते थे दादी आपको माउंट आबू नहीं जाना, और हम लोग रोज अप डाउन करते थे, दादी नीचे थी तो कहती थी दादी के पास रोज आना है, मिस नहीं करना। तो एक दिन ऐसे ही जब मैं माउंट आबू से उतरा तो सोफे पर दादी जी बैठी थी, ऐसे आंख बंद थी, अकेली बैठी थी, कोई नहीं था आजू बाजू, बहुत डीप जैसे कोई गया हुआ हो, था ही नहीं यहां साकार में। तो मैं जाके बाजू में बैठा, हमने कहा देखते दादी कब तक ऐसे बैठती है। मैं भी साथ में बैठ गया, बहुत देर तक मैं दादी को ऐसे देखता रहा, हमने कर क्या रही है। लेकिन मैंने देखा ये तो न हिल नहीं है, न ढुल नहीं है, न कुछ। तो मैं थोड़ा सा थोड़ी देर के बाद हाथ लगाया, हाथ से हिलाया मैं दादी, बहुत प्यार से ऐसे देखती आंख खोली, बोलो बोलो ऊपर से। हमने कहा दादी कुछ काम है? नहीं नहीं काम नहीं है। आप क्या कर रही थी? मैं बहुत देर से आपके साथ बैठा हूं, आप कर क्या रही थी? तो कहती बताऊं? मैं हां दादी बताओ तो क्या कर रही थी? तो बड़े प्यार से एक शब्द बोला कि मैं आज अपने हीरे को देख रही थी। ये डायमंड है ना आत्मा, मैं आत्मा रूपी डायमंड को हथेली पर रख करके देख रही थी, चारों तरफ से बहुत देर तक इसको देखा, पूरी नजर इस पर डाली कि इस डायमंड में कोई दाग तो नहीं है। लेकिन मुझे जब दाग नहीं दिख रहा था तो बाबा सामने मेरे आगे खड़े हो गए, कहते बच्ची क्या देख रही है, ये डायमंड बिल्कुल प्योर है, शुद्ध है, कोई दाग इसमें नहीं है। तो वो दिन था, मुझे बार बार वो दिन याद आता है कि मुझे फट से आया कि दादी कर्मातीत बन गई, दाग ही नहीं कोई, बेदाग बन गई। लेकिन उसके बाद एक पुरुषार्थ की नवीनता का अनुभव हुआ कि हम सबको अपने डायमंड पर जरूर नजर डालनी चाहिए। दाग तो इम्प्यूरिटी का ही है, इम्प्यूरिटी में सब विकार आ जाते हैं, काम विकार ही नहीं है। बाबा ने कहा ब्रह्मचर्य की बात सिर्फ नहीं है, कोई के प्रति घृणा है, नफरत है, ईर्ष्या है, बदला लेने की भावना है, आसक्तियां हैं, हिंसात्मक वृत्ति है, किसी को गिराना, किसी को उठाना, किसी के प्रति प्रभावित हो जाना, किसी से नफरत कर लेना, बहुत सारे बाल बच्चे हैं। और कहीं न कहीं कोई न कोई आत्मा कहेगी हिसाब किताब है, लेकिन कहीं न कहीं वो फंसी हुई है, और वही दाग उस आत्मा को संपूर्ण पावन बनने नहीं देता। हम सबको दाग जरूर एक बार महसूस तो होनी चाहिए। मुरली समझ देती है, मुरली से रोज सुनने वाला अगर एकाग्र होकर के सुनता है तो उसकी समझ डेवलप हो रही है कि भाई ये गलत है, ये नहीं होना चाहिए, ये विकार है, ये बुराई है, इसे विकर्म बनते हैं, पाप होते हैं। लेकिन समझ तक न रह जाए, उसको गहराई से रियलाइज किया जाए, महसूस किया जाए कि ब्राह्मण जीवन की प्रगति में ये बहुत बड़ा विघ्न है, यही एक रुकावट है जो मुझे अपनी संपूर्णता की मंजिल तक पहुंचने नहीं दे रहा है। हम उस पर ध्यान दें, महसूस करें। ब्राह्मण जीवन में ये बात रॉन्ग है, अगर मैं किसी से आवेश में बोल रहा हूं, कुछ गलत कर रहा हूं, ये हमारी ही कमी है, हमारा ही दाग है, और मुझे इसको समाप्त करना, उसके लिए हमें कुछ भी करना पड़े, कुछ त्याग करना पड़ता है, किनारा करना पड़ता है। लेकिन मुझे इस बात को प्रतिज्ञा करके परिवर्तन करना है, बहुत दृढ़ता का संकल्प चाहिए। तपस्या क्या है? कोई एक स्थान पर बैठ जाना, एक टांग पर खड़े हो जाना, शीर्षासन लगा लेना, वो तो हठ योगियों की है। हमारी तपस्या है दृढ़ता संपन्न संकल्प। जो संकल्प उठे वो मुझे करना है, श्रेष्ठ संकल्प करना, अशुद्ध संकल्प नहीं। तपस्या का अर्थ है बेहद की वैराग्य वृत्ति। जब तक वैराग्य उस बात से नहीं आएगा तब तक उसका त्याग संभव नहीं है। आज इतनी मुरलियां सुनते हैं, इतनी क्लासेस सुनते हैं, इतनी तपस्या करते हैं, योग भट्टियां करते हैं, लेकिन संस्कार क्या कहेंगे। कई बार एक रमणीक बात सुना दूं, मैं जगदीश भाई कहते थे संस्कार ऐसे हैं जैसे कुत्ते की पूंछ टेढ़ी की टेढ़ी रहती है। इतना सब करने के बावजूद भी वो बीज खत्म नहीं होता, और जब कोई ऐसा माहौल बनता है, ऐसी बातें उठती हैं, वो संस्कार बाहर आ जाता है जो अंदर छिपा हुआ है। कई बार हम अपने संस्कारों को अच्छे संग में, अच्छे वातावरण में, अच्छे भोजन से, पढ़ाई से, योग से दबा देते हैं अंदर अंदर। 25 साल 50 साल हो गए ज्ञान में, उन संस्कारों को हमने दबा दिया है, वो बीज को दबा करके छिपा लिया है, लेकिन उसको जलाया नहीं है। वो बीज कहीं ना कहीं अंकुरित हो जाता है। जब कोई ऐसा समय आता है, वायुमंडल बनता है, वातावरण होता है, उसको संग का पानी मिलता है, मिट्टी मिलती है, तो वो फिर से अंकुरित हो जाता है। इसलिए आवश्यकता है इतनी गहरी महसूसता, रियलाइजेशन से एकांत में बैठ करके उस पर ज्ञान सूर्य की किरणें डालो, वो इम्प्यूटी का बीज जल जाए, इतनी शीतल काया वाला योगी बन जाए, उत्तेजनाएं समाप्त हो जाए। अभ्यास करना, और हम सबको इस ऊंचे लक्ष्य को प्राप्त करना है। हम सबका लक्ष्य बाबा के समान संपन्न और संपूर्ण बनने का है। वो संपूर्णता संपूर्ण पवित्रता के आधार से ही आती है, लेकिन चलते चलते कभी कभी कोई कोई ब्राह्मण आत्माओं के अंदर ये संकल्प आता है सब तो नहीं बनेंगे, पांच तो आठ ही होंगे, 16108 में भी नंबर होंगे, सजाएं खानी पड़ेंगी। और कई बाबा के ऐसे शब्द को पकड़ करके पुरुषार्थहीन बन जाते हैं, लेकिन बाबा कहते बच्चे रेस करने का समय है, रेस नहीं करो, रेस करो। अपने संपूर्ण स्वरूप को सामने रख करके जो जो कमियां हैं, जो ऐसे संस्कार हैं जो कभी न कभी बाहर आते हैं, दो रूप में तो विशेष दिखाई देते हैं, एक कभी कोई कर्मेंद्रों में आवेग आता है, व्यक्ति अपने वेग को, अपने जोश को अंदर के कंट्रोल नहीं कर पाता, और जितने अपराध हो रहे हैं, जितने गलत काम दुनिया में हो रहे हैं, न चाहते भी परवश स्थिति जो बन रही है, वो वेग को कंट्रोल नहीं कर पा रहा है। दूसरा आवेश के साथ, आवेग के साथ आवेश, तुरंत जोश आता है, चिड़चिड़ापन आता है, कुछ न कुछ मुख से कुवचन निकल जाते हैं, अपशब्द निकल जाते हैं, पता चलता है ये आत्मा अभी भी प्योर नहीं है, शुद्ध नहीं है। आसक्तियां हैं, लोभ वृत्तियां हैं, संग्रह वृत्तियां हैं, चाहनाएं बढ़ती जा रही हैं। ब्राह्मण आत्माओं को ये सब चेक करना है, कोई भी प्रकार की चाहनाएं, कामनाएं, आसक्तियां, चाहिए ये चाहिए ये चाहिए, हद की कामनाएं भी बहुत हैं, साधनों की कामनाएं बहुत हैं, सुविधाओं की कामनाएं हैं, सबके पास, लेकिन भेंट करते, इसके पास इतना है तो मेरे पास भी हो, इसके पास ऐसा तो मेरे पास भी हो, और वो इच्छाएं व्यक्ति को भटका रही हैं, अनेक समस्याएं उत्पन्न कर रही हैं इच्छाएं। इसलिए एक स्लोगन है, इच्छाएं कम कर दो तो समस्याएं कम हो जाएंगी। कौन सी चीज की इच्छा रखना है? जब बाबा कहता है बच्चे तुम सबका एक स्लोगन है, पाना था सो पा लिया, काम क्या बाकी रहा। जब सब कुछ बाबा से हमें प्राप्त हुआ है, अविनाशी प्राप्ति हुई है, तो हद की इच्छाएं क्यों? नाम की, मान की, शान की, सुविधाओं की, बहुत सारी कामनाएं लेकर के व्यक्ति घूम रहा है। बाबा के बनने के बाद भी वो इच्छाएं समाप्त नहीं होती है, उसकी दौड़ लगी रहती है, उससे कई प्रकार के श्रीमत की अवज्ञाएं होती हैं। इसलिए हम सबको अगर लक्ष्य ऊंचा है कि हमें संपन्न संपूर्ण बनना ही है, तो अपने हद की कामनाओं पर भी बहुत कंट्रोल चाहिए। कोई भी किसी से भी कोई भेंट करने की आवश्यकता नहीं। जो बाबा आपने हमें दिया है, हमें बहुत कुछ प्राप्त हुआ है, जितनी आत्मा तृप्त है, संतुष्ट है, भरपूर है, उसकी आंख कहीं नहीं डूबती। और बाबा हमेशा रायल आत्माओं की निशानी यही सुनाते हैं, जो रायल आत्माएं होती हैं वो किसी के धन के पीछे, किसी के साधनों के पीछे आंख नहीं डालती है, भरपूर है, तृप्त है, देखती भी नहीं है, मेरे पास बहुत कुछ है, तृप्त हूं। ऐसे ही अगर मैं विशेष आत्मा हूं, तो विशेष आत्माएं किसी की कमियों पर, कमजोरियों पर, संस्कारों पर, ये ऐसे हैं, ये करते हैं, वो करते हैं, उन पर भी वो ध्यान नहीं देती। जो करते हैं अपने लिए करते हैं, जो बना रहे हैं अपने लिए कर रहे हैं, मुझे क्या करना, मुझे स्वयं को देखना है। हम स्वयं को बदलने के लिए बाबा के घर में आए हैं, लेकिन हमारी नजर दूसरों पर चली जाती और चिंतन व्यर्थ हो जाता है। क्यों लग जाती है? परसेंटेज प्योरिटी की गिरने लगती है। इसलिए हम सब बाबा के बच्चों को कुछ संकल्प लेने चाहिए। दृढ़ता से संकल्प करो, जो चीज नहीं देखती है वो मुझे नहीं देखनी। 5 स्लोगन पक्के बाबा ने कराए हैं, जैसे 3 स्लोगन हम सबने सुने हैं, हियर नो इविल, सी नो इविल, टॉक नो इविल। ऐसे ही बाबा ने कहा थिंक नो इविल, डू नो इविल। सोचना भी गलत नहीं। क्या सोचते हैं गलत? कोई अधिक समय इस देह का चिंतन करता है, देह अभिमान में रहता है, देह को देखना, देह के बारे में अधिक सोचना, देह का चिंतन करना या देह के बारे में वर्णन करना, ये ऐसा है वैसा है, बाबा कहता है ये इविल है, यही बुराई है। देह के बारे में किसी ने कोई ऐसा सोच किया, बोल किया, चिंतन किया, तो यही सब कुछ इविल है। इसलिए इन सब इसको न सुनना है, न देखना है, न बोलना है, न सोचना है। अगर सोचना है तो आत्म चिंतन करो। आत्म चिंतन, परमात्म चिंतन, प्रभु चिंतन के सिवाय दूसरा अगर चिंतन मिक्स है, माना प्योरिटी में गिरावट आ गई, चेक करो। कितना समय हम पर दर्शन करते हैं, पर चिंतन करते हैं, ये ऐसे हैं, वो ऐसे हैं, यहां ऐसे होता, वहां वैसे होता। जिसके साथ मिलेंगे शुरू करेंगे ज्ञान चिंतन, और बढ़ते बढ़ते हो बढ़ जाएगा पर चिंतन, पर दर्शन। हम सब अपने लक्ष्य की ओर आगे बढ़ रहे हैं, इसलिए जितना समय हम अपने अकाल तख्त पर रह करके इन कर्म इंद्रियों को आर्डर प्रमाण चलाते हैं, सबसे पहले तो अपने संकल्प की गति को देखते हैं, जाता किधर है। मारना भी नहीं है, दबाना भी नहीं है, लेकिन जो उसका कार्य है वही कराना है, उसे उसकी दिशा को चेंज करना है। अगर मान लो कोई इधर उधर के संकल्प बार बार डिस्टर्ब कर रहे हैं, बैठे हैं बाबा की याद में, भाग रहे हैं, जहां आसक्तियां होंगी, जहां आकर्षण होंगे, जहां कोई सूक्ष्म में भी संबंधों से या संपत्ति से या साधनों से लगाव होगा उधर जाएगा, या जहां से नफरत होगी, घृणा होगी, वैर विरोध होगा, टकराव होगा उधर जाएगा, जाएगा तो वहीं। इसलिए उसको चेक करो और चेक करके उसको रोको और रोक करके दूसरी तरफ मोड़ दो। शुद्ध चिंतन, पवित्र चिंतन, मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं, मैं महान आत्मा हूं, मैं इस सृष्टि नाटक में हीरो पार्टधारी आत्मा हूं, मैं इस सृष्टि पर बहुत श्रेष्ठ कर्तव्य के लिए अवतरित हुई हूं। चिंतन चेंज करो, चिंतन तो करना ही है। हमारा योग कोई शून्य नहीं है, जड़ता नहीं है। हमारी समाधि कोई निर्संकल्प समाधि नहीं है, ये निर्विकल्प समाधि है। कोई भी व्यर्थ विकल्प इधर उधर का ना आए, विकारी संकल्प ना आए, पतित संकल्प ना आए, किसी को गिराने का संकल्प ना आए, वो विकल्प का समाधि त्याग है, संकल्प का नहीं। संकल्प तो सारा कल्प चलते हैं, और संकल्प की गति से ही तो हम बाबा से मिलन मनाते हैं, संकल्प से ही तो हम चारों धामों की यात्रा करते हैं, संकल्प से ही तो हम पांचों स्वरूपों का अनुभव करते हैं। संकल्प ही न चलाओ तो कैसे आपको अनुभव होंगे। इसलिए संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है, इसको व्यर्थ से बचाओ। बस जो चीज मेरे काम की नहीं है, जिससे मुझे कोई चीज प्राप्ति होने वाली नहीं है, मैं क्यों देखूं, क्यों सोचूं, क्यों बोलूं, प्रतिष्ठा क्या पुरुषार्थ करूं। कई बाबा के बच्चे में क्या पुरुषार्थ करूं, बाबा कहते हैं पुरुषार्थ करके देखो, फुल स्टॉप लगाओ, मुझे नहीं देखना है, मुझे इसके बारे में नहीं सोचना है, अपने आप से बातें करो, अपने आप को समझाओ। जितना आत्मिक स्वरूप में स्थित रहेंगे, मैं एक बहुत गहरा पुरुषार्थ बताता हूं, जब समय मिले 5 मिनट, 10 मिनट, 15 मिनट मुझे मिलता है कभी, एकांत में चले जाओ, लोगों से भी थोड़ा अलग करो अपने को। वैसे बाबा कहता संगठन से दूर नहीं जाओ, कार्य व्यवहार नहीं छोड़ो, लेकिन अपनी इंद्रियों को शीतल बनाने के लिए, मन बुद्धि संस्कार और ये शरीर के कर्म इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने के लिए आपको थोड़ा समय तपस्या के लिए एकांत चाहिए। ऐसी एकांत में चले जाओ, बैठ जाओ अपने भ्रुकुटी आसन पर, मैं जो हूं जैसा हूं, अपने स्वरूप को देखो, बाबा को देखो, बाबा की लाइट और मुझ लाइट में अभी तक कितना अंतर है, क्या परसेंटेज है, अभी यूर प्योर है, परम पवित्र है। और शिव बाबा ने ब्रह्मा बाबा को भी अपने समान बना लिया, उनको भी अलग हम नहीं कर सकते, बाप दादा को देखो। और मैं आत्मा उनके समान कहां तक बनी हूं, उसका कांट्रास्ट चेक करो। देह भान को गलाने का पुरुषार्थ, एकदम अपनी आत्मिक स्थिति बन जाए, बस चलते फिरते बात करते मैं आत्मा हूं, मैं आत्मा हूं, इन कर्म इंद्रियों का आधार लेकर के कर्म कर रही हूं मैं, कराने वाली अलग हूं, ये कर्म इंद्रियां अलग हैं, शरीर का कोई हिसाब किताब है, भोगना है, ये भोग रहा है, मैं अलग हूं। भले महसूसता आत्मा को हो रही है, लेकिन उसकी फीलिंग्स में दुखी नहीं है, परेशान, शरीर से कर्म गलत हुए हैं, शरीर की भोगना ही है, मैं आत्मा साक्षी होकर के उस हिसाब किताब को चुकतू कर रही हूं। ये अभ्यास, अकाल तख्त नसीन बनने का अभ्यास, जिसे आज बाबा ने कहा तुम दिल तख्त नसीन बन जाओगे, भगवान के दिल पर चढ़ जाओगे, बहुत गहरा पुरुषार्थ है, और इसी की हम सबको मेहनत करनी है, और कोई मेहनत दूसरी करने की जरूरत नहीं। तो जब समय मिले 10 मिनट, 5 मिनट, बीच बीच में भ्रुकुटी आसन पर बैठो, अपने चमकते हुए स्वरूप को देखो, शिव बाबा की लाइट किरणें डायरेक्ट इसके ऊपर आ रही हैं, और इसकी जितनी गंदगी है, जितनी व्यर्थ है, सब समाप्त हो रही है, बहुत स्वच्छ पवित्र हीरा बनता जा रहा है। और जितनी पवित्रता की स्टेज बढ़ती जाएगी उसका आभा मंडल, उसका व्यक्तित्व अपने आप लोगों को प्रभावित करेगा। मुख से ज्ञान सुनाने की जरूरत क्या है, फिर लोग समीप आएंगे, दृष्टि लेंगे, आपसे मिलना चाहेंगे, बात करना चाहेंगे, वो दूरियां समाप्त हो जाएंगी। मैं तो आज कल क्लास में कह रहा था समर्पित भाइयों के, चार विशेषताएं हमारे जीवन में प्रैक्टिकल दिखाई दें तो हम कहेंगे हमने इस पवित्रता की स्टेज को क्रास जो बाबा चाहता है ऐसी हमने बनाई है। सबसे पहली बात है विनम्रता आती जाएगी, बहुत नम्र चित्त, निर्माण चित्त। जैसे अब जिन्होंने देखा है हमारी दादियों को, त्रिमूर्ति दादियों को देखो, कितनी विनम्रता, कोई हद होती है नम्रता की, इतनी सरल नेचर, जैसे बिठाओ जो खिलाओ जैसे बोलो। लास्ट दिनों में हमने देखा गुलजार दादी तो थी ही विनम्र का अवतार, विनम्रता का अवतार। जानकी दादी के साथ चिटचैट करते थे, बातें करते थे, इन लोगों के कभी भी बोल में स्वभाव में ही मैं बड़ी हूं, मैं हेड हूं, मुझे बाबा ने सारे यज्ञ की जवाबदारी दी है, कभी भी उनके बोलचाल में दिखाई नहीं दिया। इतनी नम्र चित्त। महिमा भी अगर करो, कहते किसकी तुम महिमा करता है, महिमा सुनने के लिए भी तैयार नहीं। कोई एक अच्छा बात, दादी आपके कारण ये हुआ, क्या बोला, मेरे कारण हुआ, बाबा बैठा है, बाबा करा रहा है, अपनी महिमा ही स्वीकार नहीं की। कोई कितनी भी महिमा करे लेकिन दादियां सदा सरल नम्र चित, अहम का अहंकार का अंश मात्र भी समाप्त हो गया, ऐसी नम्र चित आत्मा बन जाए, वाणी उसकी कितनी सरल और मधुर हो जाएगी। अभी तक भी वाणी के अंदर कटुता है, कुछ न कुछ निकल जाता है, अब शब्द निकल जाते हैं, हमारे मुताबिक हमारे अनुसार कोई कुछ नहीं करता है, फट से कुछ न कुछ ऐसा बोल देते हैं जो उसकी दिल को ठोकर लग जाए। दादियों ने कभी किसी को ऐसा नहीं बोला, भले गलती करके आया हो, पाप करके आया हो। एक बार मैं दादी जानकी के पास गया, कोई ऐसी पत्र आया था, मैं दादी इसको कुछ तो सजा देनी चाहिए, मुझे पूछती क्या देनी चाहिए, मैं दादी इसको यहां से निष्कासित कर देना चाहिए, संस्था से निष्कासित कर देना चाहिए। तो मेरे को देखते कहते अच्छा इसको निष्कासित करने के बाद ये सुधर जाएगा, जो यज्ञ में रह करके समर्पित हो करके अपने को नहीं सुधार पाया, उसको आपने निष्कासित कर दिया तो बाहर जाके सुधर जाएगा। मैं चुप हो गया, इतनी अंदर की दया भाव रहम भाव मेरे कहती है उसके प्रति योग करो, उसके प्रति शुभ भावना रखो, निकालने से कोई फायदा नहीं होने वाला, और निकलना तो अपने आप निकल जाएगा, हमको क्यों निमित्त बनना निकालने के, हमें क्यों निमित्त बनना किसी को निकालने के। इतनी बड़ी भावना चाहिए, बहुत बड़ी दिल चाहिए इसके लिए, कोई गलतियां करे और हम उसको सजा दें, कहते हैं हम सजा देने वाले हैं क्या, सजा देने वाला धर्मराज है, हम तो नहीं दे सकते। ये नम्रता की निशानी है, नहीं तो मैं बड़ी हूं, मैं कुछ भी कदम कर उठा सकती हूं, नहीं। वो प्योरिटी की स्टेज हम बता रहे हैं आपको, बहुत प्योर शुद्ध आत्माएं, सबके प्रति दया भाव, रहम भाव, करुणा भाव, प्रेम भाव उसके अंदर संस्कारों में आ गया। दूसरी, प्रमाण देने की जरूरत नहीं है मैं पवित्र हूं, हमारी जीवन प्रमाण बन जाए। प्रमाणिकता है ऊंचा चरित्र, और जिसका ऊंचा चरित्र है, जिसकी दृष्टि वृत्ति बड़ी शुद्ध है, पवित्र है, वाणी बड़ी सरल है, मधुर है, जिसकी कोई भी प्रकार की लोभ लालच नहीं है, अनासक्त है, उपराम है, वो चरित्रवान है। प्रमाण देने की क्या जरूरत है, भगवान हमें मिला है इसका भी प्रमाण हमें क्या देना, हमारी जीवन उनके लिए प्रमाण बने ना। लोग कहें इनको भगवान पढ़ाता है, कहोगे हमें भगवान पढ़ाता तो हंसेंगे लोग, इन्हीं को भगवान पढ़ाने के लिए फिर ही बैठा है। लेकिन अगर हमारी जीवन है, बिल्कुल निश्चिंतता है, बहुत ऊंचा चरित्र है, कहीं भी आंख नहीं जाती है किसी के बारे में, कोई भी ईर्ष्या द्वेष नहीं है, मैं समझता हूं उससे बड़ा प्रमाण और कोई नहीं है। आज जितना भी भ्रष्टाचार की जब बात आती है तो धन के पीछे लोग कहते हैं इसने इतना धन इकट्ठा कर लिया, इसने ये कर लिया, इसने ये कर लिया। हमारी किसी की पैसे पर आंख ना जाए। बाबा ने बहुत कुछ दिया है, धन धान्य संपन्न बना रहा है, किसी के पैसे पर, पैसे के कारण किसी की खातरी की जाए, ये पैसे वाला है इसके लिए उसको हम आगे बढ़ाएं, बाबा ने कभी भी ऐसी भावना नहीं रखी। गरीब से गरीब बच्चे को वही सम्मान दिया, पैसे वाले आए तो उनको भी सम्मान दिया, ठीक है। कोई ने बहुत कुछ सहयोग दिया है, आते हैं तो उनको अलग कमरा, अलग चीज दी जाती है, क्योंकि उनको बहुत कुछ करके यज्ञ में जाते हैं, लेकिन उनके अंदर की भावनाओं में बाबा की नहीं, ये बड़ा है ये छोटा है, सबके पर समान भावना है, किसी के धन पर नजर नहीं डाली। और धन के कारण कोई मेरे ऊपर उंगली उठाए कि इसको कोई भी पैसा दो, ये कहीं ना कहीं इधर हेरा फेरी कर देगा, वो भी चरित्र की गिरावट है। तो जो पवित्रता की स्टेज है वो प्रामाणिकता की है, और कर्तव्य निष्ठा इतनी है, कोई भी सेवा मिले, ये मेरी सेवा नहीं, ये छोटी सेवा, ये बड़ी सेवा, मुझे ही ये कहा जाता है। बाबा कहते कोई छोटी बड़ी सेवा नहीं होती, बहुत दिल से प्यार से जो कार्य सामने यज्ञ का आया, मेरा कार्य है, मुझे करना है, इसलिए सदा कर्तव्य निष्ठ है। ध्यान देना, अहम नहीं आता, अहंकार नहीं आता, मैं बड़ा हूं, मैं पढ़ा लिखा हूं, मैं अनुभवी हूं, मैंने तो इतने साल कर लिया, अभी तो इन नयों को करनी चाहिए। आज भी झाड़ू मेरे हाथ में आते तो मैं अपने घर की कमरे की सफाई नहीं करता हूं क्या? ऐसा थोड़ी, मैंने अभी तो ये आ गए हैं सब करे ना। कोई भी कार्य छोटा बड़ा, जिस स्थान पर जिस बर्तनों में हम खा रहे हैं अपने हाथ से धो लिया तो छोटे हो गए क्या? अगर हम अपने कपड़े धो लिए तो क्या हम छोटे हो गए क्या? हम बड़े हो गए। ये अहंकार की जो भाषा है वास्तव में ये अपवित्रता है। बहुत गहराई से इसको चेक करना, जो सेवाएं हैं अपनी हैं, यज्ञ की हैं, परिवार की हैं, अगर हम बहुत दिल से और निष्ठापूर्वक करते हैं, अहम भाव नहीं आता है, तेरी मेरी नहीं आता है, वो पवित्र आत्मा शुद्ध है। और चौथी बात आती है त्याग, तपस्या। हमारी जीवन तपस्वी हो। मुझे एक बात याद रहती है सदा ही, जब मैं छोटा था ना, शुरू शुरू में आया था, तो दीदी ने एक बार मुझे बुला लिया अचानक, कहती है तुम इधर आओ, तुम ब्रह्मा कुमार हो। तो मैं तो पहले डर गया, हमने कहा ब्रह्मा कुमार तो है ना बाबा के घर में, ब्रह्मा कुमार नहीं तो क्या है। तो मैं कोई जवाब नहीं दे रहा था, दीदी समझ गई, कहती है अच्छा ब्रह्मा कुमार तो आजकल बहुत है, सफेद ड्रेस पहन ली, बैज पहन लिया, ब्रह्मा कुमार है। लेकिन ब्रह्मा कुमार वो है जो तपस्वी कुमार है, जिसने अपनी इंद्रियों को तपा दिया। कोई भी इंद्रिय में अगर चंचलता है तो वास्तव में न वो ब्रह्मा कुमार है, न वो तपस्वी कुमार है। हम सबको चेक करना चाहिए, बाबा के बच्चे बनने के बाद मैं तपस्वी कुमार हूं, मेरे नयन शीतल हैं, दृष्टि वृत्ति की शुद्धता है, पवित्रता है, या चंचलता है, किसी की देह को देख करके अगर बुद्धि विचलित होती है, वो इसी प्रकार के संकल्प और विकल्प चल जाते हैं, स्वप्न शुद्ध हो जाते हैं, भाषा शुद्ध हो जाती है। बहुत गहराई से देखना कि हमने अपनी इंद्रियों को तपाया नहीं है, ऐसी तपस्या चाहिए। बैठो ऐसे एकदम अलग हो जाओ शरीर से, एक एक इंद्रिय से बात करो, जैसे बाबा दरबार लगाता था ना, मन से बातें की, बुद्धि से बातें की, फिर आंखों से बातें की, तुम चंचलता क्यों करती है, तुमको क्या चाहिए, जवान तुम जड़ होकर के ये खाऊं ये खाऊं ये खाऊं, बाबा कहता था खाऊं खाऊं तेरे पेट में बलाऊं। क्या आसक्तियां लगा के रखी है, दो रोटी खाओ, प्रभु के गुण गाओ, क्यों उसके पीछे भाग रहे हो खाने के पीछे, जितना चटपटा अटपटा खाओगे स्वास्थ्य बिगड़ जाएगा। तो बाबा ने अपने बच्चों को संपूर्ण पावन बनाने के लिए बहुत अनेक प्रकार की शिक्षाओं से सजाया है, और उसके लिए कहा है बच्चे तपस्वी बन जाओ। बस त्याग है देह मान का, हम कोई वस्तुओं का साधनों का तो त्याग नहीं कर रहे, आराम से बैठे हैं, सब चीजें हैं, लेकिन सब कुछ प्रयोग करते हुए आसक्त नहीं है, है तो यूज कर रहे हैं, नहीं है तो उसके पीछे नहीं भाग रहे हैं। त्याग है देह मान का और तपस्या है आत्म अभिमानी की, आत्म अभिमानी बन करके रहो, जो कोई बातें मेरे काम की नहीं उनका त्याग करो, अशुद्धि का त्याग है, बुराइयों का त्याग है, विकारों का त्याग है, बाकी साधन सुविधाएं तो बच्चों के लिए तो हैं, बाबा कहते हैं सब जितने भी साधन हैं प्रकृति के वो सब तुम्हारे लिए तो हैं, यूज करो, लेकिन आसक्त होकर के नहीं, अनासक्त होकर के, वृत्तियां अनासक्त रहे। तो ऐसे अनासक्त वृत्ति वाली आत्माएं, त्यागी आत्माएं, तपस्वी आत्माएं, जीवन का प्रमाण देने वाली आत्माएं, कर्तव्य निष्ठ और विनम्र आत्माएं ही संपूर्ण पवित्र है। और वो पर्सनैलिटी जब संगम पर हम धारण करते हैं तो आधा कल्प तक पूज्य स्वरूप में हम देवी देवता रूप में शरीर और आत्मा दोनों पावन रहते हैं। द्वापर और कलयुग में हमारी यादगारें बनती हैं, मंदिर बनते हैं, और उनसे अनेकों की मनोकामनाएं पूरी होती, दर्शन से लोग प्रसन्न हो जाते हैं। ऐसी पर्सनैलिटी देवी देवताओं जैसी जड़ मूर्तियों की जो है पर्सनैलिटी, वो आज के किसी व्यक्ति की नहीं है। और संगम पर तो भगवान डायरेक्ट मिलके पढ़ाता है, ये संगम की पर्सनैलिटी सर्वश्रेष्ठ हीरो पार्ट धारी आत्माएं हैं, इस पर्सनैलिटी को भी याद करो। तो संगम पर इतनी ऊंची रूहानी पर्सनैलिटी को धारण करके हम पूरे कल्प के लिए सर्वश्रेष्ठ महान आत्माएं बन जाते हैं। तो सभी ये धारणा करके संगम पर एक लक्ष्य रख करके जाओ, भट्टी का एक उद्देश्य हो कि हम सब आत्मा की कोई भी छोटी मोटी जो बीच में मिलावट हुई है देह मन के कारण, जो मिक्स हुआ है, उस मैल को निकाल दें। सोना कभी गल नहीं जाता, लेकिन सोने को गला करके उसकी मैल को निकाल दिया जाता है। तो सोने में जो मिलावट हुई है, जो 24 कैरेट को 9 कैरेट तक ले आए हैं हम सब, विकारों की मिलावट को निकालने के लिए योग अग्नि है। और जब योग अग्नि में आत्मा पड़ती है तो अपने आप निकल जाती है। इसलिए आत्मा खत्म, संस्कार खत्म हो जाते, संस्कार खत्म नहीं हो जाते, संस्कारों के अंदर जो मिलावट आई वो खत्म हो जाती, देह मान समाप्त हो जाता है। तो सभी खूब अच्छी तपस्या करो, ऐसा अच्छा योग करो जो जरा भी कोई अंश मात्र भी मिलावट है वो निकल जाए, और आत्मा बिल्कुल प्योर शुद्ध पावन बन करके बाबा के साथ उड़ करके जाए। योग में भी उसी को आनंद आता है जो बिल्कुल पावन होता है, स्वच्छ होता है। इसलिए पवित्र बनो, योगी बनो, पवित्रता से योग सहज हो जाता है, और जितना योग गहरा हो जाता उतनी आत्मा की पवित्रता की परसेंटेज बढ़ जाती, दोनों एक दूसरे पर निर्भर है। इसलिए सभी पवित्र और योगी बन करके संगम के सुख का आनंद का अनुभव करो और सारे कल्प में नंबर वन श्रेष्ठ पाठधारी बन करके पाठ बजाओ। ओम शांति।